प्रेरक उद्बोधन। बोर्ड परीक्षा परिणाम से उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए बिलासपुर जिला प्रशासन की पहल। जिले के आला अधिकारी और मोटिवेटर्स 10वीं और 12वीं के बच्चों और पालकों को फेसबुक लाइव द्वारा प्रेरित कर रहे हैं। अर्पा सामुदायिक रेडियो ऐप और वेबसाइट पर इन प्रेरक संवादों का प्रसारण किया जाएगा। सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे, दोपहर 3 बजे से इन दोनों ही प्रेरक उद्बोधनों का पुनः प्रसारण होगा। तो आइए आज इस प्रेरक उद्बोधन की पहली कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं बिलासपुर के जिलाधीश श्री अवनी शरण का प्रेरक उद्बोधन।
सभी को नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक को लेके चर्चा करेंगे वो है बोर्ड एग्जाम, और एग्जाम के बाद रिजल्ट के आने से पहले हमें कैसे तैयार रहना चाहिए। स्पेशली जो बच्चे 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड परीक्षा है अभी जस्ट उन्होंने जो दिया है, और अभी बहुत सारे स्टेट्स के रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे करके बहुत सारे स्टेट हैं जिनके बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। अभी आगामी समय में छत्तीसगढ़ का रिजल्ट भी आएगा बोर्ड का, जो संभावित है नेक्स्ट वीक। इसके साथ साथ CBSE, ICSE के भी रिजल्ट आएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स, साथ ही टीचर्स भी इसमें ऐड हुए हैं, तो हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। जिनको भी इसके बीच में कोई प्रश्न पूछना हो या अपनी शंका या कुछ भी सजेशन हो, वो चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका हम लोग रिप्लाई या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे उस पर। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बोर्ड एग्ज़ाम को जो कि सबसे, मतलब कहिए कि करियर का जो सबसे, करियर की सबसे पहली सीढ़ी होती है, उसको आपने एग्ज़ाम को दे लिया है, तो आपने अपना जो बेस्ट एफर्ट था वो कर लिया है, अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में आपने अपना बेस्ट दिया है, और जो आपने पूरे साल पढ़ाई की है वो एग्ज़ामिनेशन में आपने, एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपने लिखा है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो टॉप करना चाहते होंगे, हर बच्चा टॉप करना चाहता है, बट ऐसा नहीं है कि सभी टॉप कर जाएंगे या सभी के मार्क्स अच्छे होंगे। पढ़ाई करना, नॉलेज होना, एग्जामिनेशन हॉल के 2-3 घंटे में उन चीज़ों को समराइज करके लिखना, ये दोनों थोड़ा सा इसमें अंतर है। आप पढ़ाई करते हैं, पूरे साल पढ़ाई करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर अच्छा होना बुरा होना, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो आपने पूरे साल पढ़ाई की, वो एक सबसे मेजर फैक्टर है। कुछ बच्चों की एग्जामिनेशन के जस्ट पहले एग्ज़ाम फियर होता है, उसमें तबीयत खराब हो जाती है। कुछ बच्चे एग्जामिनेशन के समय कोई बड़ा इवेंट होता है उसमें बिजी हो जाते हैं, तो पूरे साल की पढ़ाई जो समराइज करना था लास्ट में वो नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे एग्जामिनेशन हॉल का जो फियर है उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। आप ध्यान देंगे कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो भी हम भूलना शुरू कर देते हैं, ऐसा लगता है कि हमने कभी पढ़ाई नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अब हम रिजल्ट का जब इंतज़ार करते हैं, इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चा अपने से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेता है, या पेरेंट्स के द्वारा कि भाई टॉप करना है तुम्हें, या 95% मार्क्स या 98% मार्क्स लाना है, सभी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लाना है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि हम और बेहतर करने के प्रयास में रहते हैं। तो जब रिजल्ट आता है और रिजल्ट अपेक्षाकृत हमारे, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक नहीं होता है, तो फिर हम थोड़ा सा परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। कभी कभी कोई बच्चा गलत स्टेप भी उठा लेता है, और दूसरे बच्चे वो होते हैं कि जिनको पहले से आइडिया है कि मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ है, उनमें भी दो कैटेगरी है। कुछ बच्चे माइंड मेकअप करके रखते हैं कि इस बार नंबर बहुत अच्छा नहीं आएगा, लेकिन देखेंगे जो आएगा उसको हम फेस करेंगे। और दूसरी कैटेगरी होती है तो जब नंबर कम आते हैं तो घर में डांट पड़ती है, मजाक उड़ाया जाता है, जो बच्चा अच्छा नंबर लाया है पड़ोस का उससे कंपेयर किया जाता है, तो इस चक्कर में बच्चा कभी कहीं, मतलब परेशान होकर कोई गलत स्टेप उठाता है। तो मेरी सभी बच्चों से गुजारिश है, और स्पेशली पेरेंट्स और टीचर्स से, कि आगामी कुछ दिनों में अपने बच्चों से एग्ज़ाम को डिस्कस मत करिए। जो उन्होंने करना था वो कर दिया, एग्जामिनेशन हॉल में अपना बेस्ट दिया, कोई बच्चा जानबूझ के खराब नहीं करता है, ये आप मान के रखिए। अब आपको ये करना है कि जो ये रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट के लिए बच्चे को तैयार करें और अपने को तैयार करें। कहा भी जाता है होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप उम्मीद करिए, आशा करिए कि नंबर बहुत अच्छे आएंगे, आपके बच्चे टॉप करेंगे या आप बेहतर होगा जो को होगा, बट अपने को सबसे बुरे उसके लिए तैयार रखिए कि अगर बहुत खराब नंबर आएगा तो क्या करना है। तो बच्चों के साथ बैठिए, टाइम स्पेंड करिए, कहीं घूमने चले जाइए, अभी तो स्कूल भी बंद हो गए हैं सारे, तो आप कहीं समर वेकेशन, समर हॉलीडे पे जा सकते हैं, और परीक्षा की चर्चा कीजिए ही मत कि नंबर अच्छा आएगा फिर भी कोई बात नहीं, बुरा आएगा फिर भी कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छे नंबर के लिए, मतलब आप उसको एनकरेज करने के लिए, अरे तुम्हारे तो बहुत पेपर अच्छा हुआ था, तुम्हें तो इस बार मैथ्स में 100 out of 100 आने वाला है, अब मान लो उसका 95 आ गया तो वो बेचारा 95 ला के भी परेशान रहता है, तो ऐसा हमको नहीं करना है। तो अभी से तो एग्जामिनेशन के रिजल्ट को डिस्कस करना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के जो मिडिल क्लास फैमिली स्पेशली, उसमें देखा गया है बच्चों के रिजल्ट को हम स्टेटस सिंबल बना देते हैं। पेरेंट्स की पहचान बच्चों के रिजल्ट से होने लगती है कि देखो फला बच्चा जो है वो 90% मार्क्स लाया है, उसके पापा हैं ये, है ना, या उसकी मम्मी है ये। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चा एक, आप उसको बताते नहीं है बट अननोइंगली वो एक प्रेशर बना लेता है अपने ऊपर कि पापा मम्मी मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, टीचर मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे तो हमेशा बेस्ट करना है। इस चक्कर में क्या होता है, अगर रिजल्ट 2-4 number भी कम होता है तो वो परेशान हो जाता है कि पापा को कैसे फेस करूंगा, मम्मा को कैसे फेस करूंगा, अपने टीचर को कैसे फेस करूंगा। बट अपने को प्रूव नहीं करना है, ये 10वीं और 12वीं का मार्क्स है, लाइफ में बहुत सारे मौके मिलेंगे आप, ये तो पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी में अगर कोई बच्चा परेशान हो गया तब आगे करियर में कहां से मतलब उतना प्रेशर झेल पाएगा वो। बेसिकली क्या है कि ये पहली सीढ़ी है, इसको एक फर्स्ट स्टेप की तरह यूज करें कि 10वीं जो है बेस्ट हमें करना है, बोर्ड एग्जाम है, अच्छा करेंगे तो बेहतर कॉलेज, बेहतर स्कूल में एडमिशन होगा, 12वीं में अच्छा करेंगे तो बेहतर हमें आगे मौके मिलेंगे, बट ये आखिरी मौका नहीं है आपका। जो बच्चा अच्छा करेगा, जिसके नंबर अच्छे आएंगे, उनको तो एडवांस में शुभकामनाएं कि आपको निश्चित रूप से आपने करियर का सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव है वो पार किया है, बट जिनके मार्क्स किसी न किसी कारण से कम आते हैं उनको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, और पेरेंट्स को उनकी खिंचाई करने की या उनको दूसरे बच्चे से तुलना करने की जरूरत नहीं है। ये जो खुद का प्रेशर है, जैसे खेल की बात करें, स्पोर्ट्स में आप देखेंगे, इसीलिए स्पोर्ट्स में बच्चों को आपको लगाना चाहिए, बच्चों को कोई ना कोई खेल खेलना चाहिए, क्यों, खेल में क्या होता है, हम दिन भर में 4 बार हारते हैं, 4 बार जीतते हैं, 1 बार फुटबॉल खेलेंगे तो गोल खा लेंगे, हो सकता है अगला गोल आप कर लें, तो क्या दिखाता है कि आपको मौके मिल रहे हैं। लाइफ अगर गेम की तरह देखें तो आपको गेम में बहुत सारे मौके मिलेंगे गोल करने के, अगर एक गोल नहीं हुआ उस चक्कर में ऐसा नहीं है, या एक मैच अगर हार गए IPL का तो ऐसा नहीं कि आप फाइनल में नहीं पहुंच सकते। बहुत सारे ऐसे IPL हुए हैं, आप भी देखेंगे कि पहले के शुरू के 3-4 match हारने के बाद भी जो टीम है वो चैंपियन हुई है। वर्ल्ड कप अगर क्रिकेट भी देखें तो अगर खेल से भी जुड़े तो आप रिलेट कर पाएंगे उस पर। अगर बहुत सारे मेरे पास उदाहरण हैं, मेरी सर्विस में ही बहुत सारे ऐसे ऑफिसर अभी हैं कि जिनका अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड देखेंगे तो अगर उस समय वो सोचे होते वैसा, अगर मार्क्स को बहुत ज़्यादा दिमाग में रखे होते तो आज कहीं आगे नहीं बढ़ पाते। आपने 12वीं फेल मूवी देखी है, 12th fail, उनके जो हीरो हैं नायक मनोज शर्मा, आज वो IPS ऑफिसर हैं, सीनियर IPS ऑफिसर हैं, अगर उस फिल्म में आप देखेंगे तो 12वीं में फेल कर गए थे। अगर उनके पेरेंट्स ने, अगर उनके उस मूवी में उनकी दादी जी को दिखाया गया है, अगर एनकरेज नहीं की होती तो वो कभी आगे नहीं बढ़े होते। उनको लगता है कि जीवन का मेरा बस यही अंत है, 12वीं के आगे तो अगर फेल कर गया एक बार तो आगे हम बढ़ ही नहीं सकते, बट उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। तो मेरी सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश है, यही वो समय है जब आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। बच्चों को ये बोलिए कि भाई जो कमी रह गई है, अगर मान लो पेपर में नंबर अच्छे नहीं आए, जहां जो कमी रह गई उसको एनालाइज करें, खुद पे भरोसा करें, सबसे पहले तो खुद पे भरोसा होना चाहिए, बच्चों का खुद पे भरोसा होना चाहिए, तभी वो खुद की जो कहते हैं एनालिसिस कर सकता है और नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट एग्जाम्स में बेहतर कर सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो 1996 में मैंने 10th board दिया था और उस साल इंडिया में वर्ल्ड कप मैच चल रहा था, सारे मैचेस मैंने देखे TV पे। इस चक्कर में क्या हुआ, मेरे नंबर बहुत ख़राब हुए, 3rd division से मैंने 10th pass किया था और मैथ्स में तो मुझे 30 number आए थे आउट ऑफ 100, बट मेरे पेरेंट्स ने, पापा मम्मी ने मुझे एनकरेज किया, बीच में उन्होंने एक बार कहा भी कि तुम दोबारा 10th बोर्ड दे दो क्योंकि नंबर तो बहुत खराब है। मैंने कहा कि नहीं, अगर अगली बार फेल कर गया तो और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 1 साल खराब नहीं करना है, मुझे आप मौका दीजिए, मैं 12वीं में अच्छा करके दिखाऊंगा। फिर मैंने 12वीं किया, 12वीं में 65% मार्क्स, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन भी मेरा फर्स्ट डिवीजन था। फिर आगे चल के मैंने यूपीएससी की परीक्षा सेकेंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई की। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, एक तुषार सुमेरा करके हैं, गुजरात काडर के आईएएस ऑफिसर हैं, उनके भी देखें तो एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी आज बहुत सफल अधिकारी हैं। ये तो एग्ज़ाम की बात हो गई, अगर इस चीज़ को जीवन में भी देखें तो जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव होता है। आप अगर बिजनेस भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कभी हो सकता है किसी साल फेल कर गया कि फेल हो जाए, बिजनेस में घाटा हो गया, तो अगर उस साल के बिजनेस को आप बेस बना के कि 1 साल का बिजनेस मेरा फेल हो गया तो आगे पता नहीं क्या होगा, आप बिजनेस अगर बंद कर देंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस चीज़ को लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप देख सकते हैं कि 1 साल 2 साल, जिंदगी बहुत लंबी है और बच्चे जो हैं बहुत ही मतलब मैं तो कहता हूँ ईश्वर के रूप हैं, तो उन पे बेवजह जो चीज़ वो एग्जामिनेशन हॉल में करके आ गए हैं, अब उनको डिस्कस करना, उनको डिस्करेज करना, दूसरे बच्चों से कंपेयर करना कभी नहीं करें, तो मेरी गुजारिश यही है। और ये जो हम लोग अभी फेसबुक सेशन कह लें या मोटिवेशनल जो हमारा जो सेशंस होंगे, ये लगातार अभी 5 मई तक लगातार चलेंगे। मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक बच्चे इसमें जुड़ें, और हमारे ज़िले के बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे लेक्चरर और जो अपने करियर में आगे सफल हैं उनसे इंटरेक्शन करेंगे, ताकि आप लोग जो भी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनको एक बढ़िया मतलब कह सकते हैं मार्गदर्शन मिलेगा। और मेरी गुजारिश है सभी शिक्षकों से कि आप बच्चे से अभी से ही संपर्क में रहें, आपको पता है कि कौन बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में और किसका पेपर खराब हुआ है, क्योंकि पेपर के बाद जनरली हर बच्चा अपने टीचर से जरूर डिस्कस करता है पेपर, तो एक बार उन लोगों से चर्चा करें, और मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलने वाला है। तो आगामी जितने भी, अभी मैंने तेलंगाना का पढ़ रहा था, 2-3 दिन पहले तेलंगाना बोर्ड का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों ने उसमें गलत स्टेप उठाया, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमें बहुत मतलब दुखी करती हैं कि इतना छोटा 10वीं और 12वीं के समय, आप ये बताइए बच्चों की मेच्योरिटी क्या होती है, बच्चों का जो मेंटल स्टेटस, मेंटल लेवल इतना ज़्यादा होता नहीं है कि चीज़ों को जज कर पाए। तो यहाँ पे हम लोगों का जो रोल है, पेरेंट्स का, टीचर्स का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, पेपर बिगड़ गया है तो बार बार चर्चा उचित नहीं है, लेकिन आगे अवसर बहुत है। बहुत अच्छी बात कही जय कौशिक जी ने। तो अगर आप लोगों के पास भी कुछ, मैं देख रहा हूँ अधिकतर लोग इनिशिएटिव को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट अगर कोई पेरेंट्स कुछ उसमें पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल या इस तरह की जो सजेशन है वो डाल सकते हैं। कल भी हम लोगों ने एक सेशन किया था, एक वेबिनार किया था, ज़िले के जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी और प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के साथ, उसमें भी काफ़ी सारी चर्चा हुई थी, और ये अगले पूरे 1 हफ्ता ये आप लोगों को दिखेगा। और एक चीज़ जो मैं बार बार ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम का जो फियर है और एग्ज़ाम का जो रिजल्ट का बेसिकली प्रेशर है, वो दोनों तरीके का होता है। कभी कभी पॉजिटिव चीज़ें भी जो है वो निगेटिव बन जाती हैं, जैसे मैंने बताया कोई बच्चा बहुत अच्छा है, पेरेंट्स लगातार तारीफ कर रहे हैं, दूसरे बच्चे को समझा रहे हैं, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिसको मैंने बोला स्टेटस सिंबल बना लिया रिजल्ट को, तो अगर वो रिजल्ट में अगर मान लो 2-4% भी नंबर कम आता है तो बच्चा खुद में एक प्रेशर फील करता है, तो ये भी हम नहीं करें। जैसा मैंने कहा, अभी तो फिलहाल बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, अगर उनको मूवी का शौक है, आप लोग पूरी फैमिली के साथ मूवी जा सकते हैं देखने, समर कैंप कहीं कहीं पे चल रहा होगा वहाँ पे टाइम स्पेंड करें, आप कहीं और भी आउट ऑफ स्टेशन चले जाएं। इस समय बहुत ज़्यादा मुझे लगता है एक और प्रेशर होता है, रिलेटिव्स का प्रेशर होता है, अपने जो आसपास के जो अपने पड़ोसी हैं उनका भी प्रेशर होता है, तो ये लोग भी थोड़ा सा मतलब बातें इस तरह की होती हैं कि बच्चा अपने आप में एक प्रेशर फील करता है कि हाँ उनके बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी ऐसा करें। सर मैं अपने स्कूल का टॉपर हूँ लेकिन इस बार मेरा केमिस्ट्री नहीं बना है तो पास ही नहीं होऊंगा शायद। हर्ष रजक, कोई बात नहीं हर्ष, अगर मान लो तुम्हें ये लग रहा है पहले से कि पास नहीं हो पाओगे, तो आप अभी से ही थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर होइए, अपने को करिए, है ना, तो नेक्स्ट ईयर ये कोशिश करिए कि आप हर विषय में डिस्टिंक्शन लाएं, केमिस्ट्री मान लो इस बार बिगड़ भी गया है और आपको लग रहा है पहले से कि केमिस्ट्री में नंबर कम आएंगे, पास भी नहीं कर पाएंगे, तो आप नेक्स्ट ईयर की अभी से प्रिपरेशन करिए। सर, बच्चों को, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें बच्चों पर प्रेशर न डालने के लिए? पेरेंट्स को थोड़ा समझना पड़ेगा कि बच्चा अगर गलत स्टेप एक बार ले लिया तो फिर आपके पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। आप हमेशा मतलब अपने को अपराधी की तरह फील करेंगे आप कि हमने प्रेशर दिया, हमने ऐसा किया, तो बच्चे ने कोई गलत स्टेप ले लिया। विधि तिवारी, मन न लगने पर क्या करें? मन न लगने पे आपको जो चीज़ पसंद है, जिसमें मन लगता होगा, जो आपकी हॉबी है, आप उसमें टाइम स्पेंड करें, है ना, दोस्तों के साथ बैठें, दोस्तों के साथ चर्चा करें, जो आपको घर में कोई हो सकता है बड़ा भाई या छोटा भाई, छोटी बहन, उनसे आपके अच्छे टॉकिंग टर्म्स हों, बहुत अच्छी डिस्कशन होती हो, उनके साथ चर्चा करें अपनी जो मतलब जहाँ आपको लग रहा है प्रॉब्लम वाला जो एरिया है, उनसे शेयर करें, उनसे डिस्कस करें। एग्ज़ाम इतना मुश्किल क्यों होता है सर? स्टडी करने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं निकल पाता क्यों? देखिए, एग्ज़ाम में अगर मान लो नंबर ख़राब आया, जैसे मैंने 3-4 फैक्टर बताए, इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि आप नॉलेज नहीं आपके पास, नॉलेज हो सकती, बट एग्जामिनेशन हॉल में आप सही से परफॉर्म नहीं कर पाए वो 2 या 3 घंटे का जो पेपर होता है उसमें। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में होंगे जिससे कि आप पेपर ख़राब हो गया होगा, तो उसमें परेशान नहीं होना है, अगले एग्ज़ाम के लिए तैयार होना है। मेरे ख्याल से बच्चों को 10th व 12th क्लास से कोई ना कोई स्किल में इन्वॉल्व होना चाहिए जिसमें उनकी प्रतिभा उभरेगी, स्टडी करने मन लगेगा, एंगेज रहेगा। बहुत सही सुझाव है और मुझे लगता है कि स्किलिंग जो है कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बच्चों को 10वीं और 12वीं के बाद भी किसी न किसी स्किल में लगाना चाहिए। उससे 2 फायदा होता है, एक तो आपका नॉलेज बढ़ता है, स्किल एनहांस होता है, दूसरा आप कुछ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाते हो कि सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, बाकी चीज़ों को भी आप सीखते हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा सजेशन है। बच्चे मोबाइल पर बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं, पेरेंट्स होने के नाते हम क्या करें? ये तो एक प्रॉब्लम है, आजकल तो 3-4 साल के बच्चे भी मोबाइल पे रील देखते हैं, और ये इसलिए है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इस तरह का एडवांस हो गया है, अवेलेबल है, हर बच्चे के पास है। इसमें आप एकदम से मना करके या उसको रोक के आप इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि स्क्रीन टाइम सेट कर देना चाहिए और उसको किसी चीज़ से जोड़ना चाहिए कि अगर ये तुम होमवर्क कर लोगे तो ठीक है 10 मिनट के लिए तुमको मोबाइल मिलेगा गेम खेलने के लिए, या ये फलाना कर लोगे तो तुम्हें आधे घंटे के लिए मोबाइल मिलेगा। तो स्क्रीन टाइम सेट करना इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है कि मोबाइल में वो कंटेंट क्या देख रहे हैं, वो भी ज़रूरी है। मोबाइल के यूज़ करने के साथ साथ मोबाइल के कंटेंट भी देखना पड़ेगा। कभी कभी वो रील इस तरह की भी होती है जो छोटे बच्चों पे के मस्तिष्क पे वो गलत असर डालती है, बच्चों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे कंटेंट क्या देख रहे हैं। आदरणीय बच्चों में नकारात्मकता को कैसे दूर करें? जब पालक वर्ग का अपेक्षित सहयोग न मिले, PL महिपाल प्राचार्य। प्रिंसिपल साहब, आपको तो ये देखना पड़ेगा बच्चों में नकारात्मकता आ क्यों रही है। एक्चुअली हमारा परिवेश इतना ज़्यादा इस तरह का हो गया, हमारा इंटरेक्शन इतने लोगों से होता है कि हम हर तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ओवर थिंकिंग, हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके, एक अपना खुद का एक सेल्फ मेड जो प्रेशर होता है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो जो नकारात्मकता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव माहौल बनाएं और उनकी जो पॉजिटिविटी है बच्चों में, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको सही से चैनलाइज करें। सर, मैं युवोदय मनोबल वॉलेंटियर अमन कश्यप हूँ, मैं जो पढ़ लेता हूँ अधिकतर भूल जाता हूँ, उसके लिए क्या करना चाहिए? ये तो जो चीज़ें हैं ये हर बच्चे के साथ होती है, बच्चों के साथ क्या हमें भी होती है कि हम बहुत सारे काम भूल जाते हैं, तो सबसे अच्छा होता है उसको नोट करें, है ना, सिर्फ याद करना, रटना जरूरी नहीं है, उसको बार बार लिखें। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं कम से कम उसको 3-4 बार आंसर राइटिंग करें, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। पालकों का अपने बच्चों पर से अपेक्षा और आसपास के बच्चों से दूसरे से तुलना करने से बच्चों के मन में हताशा बैठ जाती है। बहुत सही लिखा है जय कौशिक जी ने, तो ये कंपेयर करना और तुलना करना बंद कर दें। पॉजिटिव कंपेयर भी ना करें, निगेटिव कंपेयर भी ना करें। कभी कभी हम लोग पॉजिटिव कंपेरिजन ज़्यादा करते हैं, उसके चक्कर में बच्चा एक अपना खुद का एक प्रेशर क्रिएट कर लेता है और वो प्रेशर आपसे डिस्कस कभी नहीं करेगा। आपके मन में, उसके मन में हमेशा ये रहेगा कि मुझे प्रूव करना है, तो ये प्रूव करने वाली चीज़ नहीं है। आपको किसी को प्रूव नहीं करना है कि अगर आप 10th टॉप कर गए तो आप अपने लिए किए, आपको किसी को प्रूव करके दिखाना है, मुझे फलाने को दिखाना है, ये वैसी भावना नहीं होनी चाहिए। बच्चों को मोबाइल से पढ़ाना कैसा रहेगा? मेरा तो यही सजेशन रहता है कि मोबाइल से जो पढ़ाई होती है बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि आप खुद भी जब मोबाइल यूज़ करते हो तो आप धीरे धीरे करते करते इतने सारे ऐप होते हैं कि आप शुरू करते हो गूगल से, विकिपीडिया से, और चले जाते हो व्हाट्सएप पे और रील पे, इंस्टा पे चले जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो जो डेविएशन है मोबाइल में बहुत ज़्यादा होता है। मुझे जो सही लगता है, बाकी हो सकता है आप मोबाइल से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, कि उसकी हार्ड कॉपी लेके पढ़ेंगे, नोट्स लेके पढ़ेंगे, बुक लेके पढ़ेंगे, तो ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे टॉपिक पे। बच्चों को भी इसी तरह से सिखाना चाहिए। हाँ, जहाँ ऑप्शन नहीं है आपके पास, मोबाइल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कंटेंट वो आपके मतलब लैपटॉप पे या उस पे है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। सर, 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं? 12वीं के बाद बहुत कुछ कर सकते हैं, 12वीं के बाद ही सब कुछ कर सकते हैं। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं, वहाँ भी बहुत सारे अवसर हैं। अगर आप आर्ट्स वाले हैं, उसमें भी बहुत सारे अवसर हैं। अगर आप आपकी 12वीं के बाद ही आपका बिजनेस करने का मन हो रहा है या प्राइवेट सेक्टर में जाने का मन हो रहा है, वहाँ भी बहुत सारे अवसर हैं। तो डिपेंड ये करता है कि 12वीं आपने किस सब्जेक्ट से किया है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किससे किया है। सर, बच्चों को सोशल साइट के दुरुपयोग के बारे में भी कुछ बोलें। एक मदर हैं रश्मि श्रीवास्तव, इनकी जो चिंता है वो बहुत सही है। जैसा अभी मैंने जस्ट बताया था कि मोबाइल तो यूज़ करेंगे बच्चे, हम अगर ये बोलें कि हमारे समय में इंस्टाग्राम हम यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि उस समय इंस्टाग्राम था ही नहीं जब मैं 10वीं और 12वीं में था, मतलब इनफैक्ट यूपीएससी प्रिपरेशन में भी इंस्टाग्राम उस समय तक तो पॉपुलर नहीं हुआ था, या शायद आया ही नहीं था। बट अब ये सच्चाई है समाज की, और ये सब सोशल साइट्स रहेंगे। आपको बस ये देखना है कि बच्चा कंटेंट क्या देख रहा है। कम से कम जब मोबाइल यूज़ कर लेता है, उसके बाद चेक करें कि वो क्या सर्च किया है उस पर। इस पे पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स को ध्यान देने की आवश्यकता है, अदरवाइज आजकल बहुत सारे कंटेंट इस तरह के आए हैं जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। नमस्ते सर, अगर हमें किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो कैसे करें? किसी भी क्षेत्र में, ये आपका एक जनरलाइज क्वेश्चन है, बट ये सभी के लिए मतलब मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो अपने को समझें, अपनी क्षमता पहचानें। कभी कभी क्या होता है, हम अपने को एनालाइज नहीं कर पाते, अपने बारे में कम जानते हैं और किसी भी फील्ड में लग जाते हैं, किसी को देखा देखी, जिसको कहते हैं ना देखा देखी लगना। सबसे पहले अपने को एनालाइज करें, अपनी क्षमता को पहचानें, अपने पर भरोसा रखें, और किसी भी फील्ड में आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक महीने, जैसे आजकल छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर कोई अच्छी मूवी देख लिए तो अगर उसमें देख लिए कि स्पोर्ट्स वाली कोई मूवी देख ली, जैसे मैदान मूवी अभी आई है, चक दे इंडिया आई थी, तो उनको प्लेयर बनने का मन करने लगता है। फिर कल हो के दूसरी मूवी देखेंगे तो उनको आर्मी में जाने का मन करने लगता है। तो ये तो बचपन में सही लगता है, बट जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें कोई, अगर हमने करियर सोचा है तो उस पर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दो दिन हमने अपना रूटीन सेट किया और उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई कर रहे हैं, बस तीसरे दिन हम कहीं और लग गए। तो एक रूटीन सेट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और अपने पे भरोसा होना चाहिए। और सबसे जो जरूरी है, पेरेंट्स का सपोर्ट। अगर आप पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, पेरेंट्स को अगर, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं, जैसे खासकर लड़कियां, कि पेरेंट्स हमारी चाह रहे हैं कि मतलब ग्रेजुएशन करने की बात, शादी कराना चाह रहे हैं, जबकि हम कुछ करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा, उनसे झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, उनसे लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा बेहतर सोचते हैं। हाँ, उनके सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग, हो सकता है आपके कोई टीचर हो जिनसे आपकी अच्छी मतलब उनसे अच्छा आपका टर्म हो, उनसे बोलिए कन्विंस करने के लिए, खुद कन्विंस करिए। अपने बड़े छोटे कोई भाई बहन है, उनसे बोलिए कि आपकी तरफ से पेरेंट्स से बात करें। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अंबिका साहू पूछ रही हैं, सर हाउ टू रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन। ओके, देखिए डिस्ट्रैक्शन तो होता है, इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं। आप अगर अपना वातावरण देखिए तो 10-20 साल पहले जो था, चीज़ें बहुत स्लो होती थी, अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो डिस्ट्रैक्शन तो होता है। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए वही है कि आपको कोई हॉबी बनानी पड़ेगी जिसमें आप ज़्यादा अपना कंसिस्टेंसी के साथ समय दे सकें। पढ़ाई पे आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे बहुत हद तक आपको दूर रहना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा सा सुझाव, पालकों को समर वेकेशन में शहरी बच्चों को गाँव का भ्रमण और ग्रामीण बच्चों को शहर का भ्रमण कराना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर अनुपम तिवारी जी ने कही है। तो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक समर कैंप का आयोजन आप लोगों को कराना चाहिए, स्पेशली ब्लॉक लेवल पे और कराते भी रहते हैं। मुझे लगता है राजीव गांधी शिक्षा मिशन और ये जो इसकी जो अलग अलग जो योजनाएं हैं इसमें आप लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हम लोग कर सकते हैं। खासकर जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल जाए, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल जाए, और वो जो इंटरेक्शन हो गया, चाहे वो एनवायरमेंट जो है, वो लग रहा है मुझे इंटरेक्शन ज़्यादा बच्चों के लिए फ्रूटफुल होगा। बच्चों को, गांव के बच्चों को शहर लेके आए, दिखाएं शहर का माहौल क्या होता है। मुझे लगता है कि जो ऑफिसेस हैं वहाँ भी विजिट कराना चाहिए, कलेक्टर ऑफिस का, जैसे एसपी ऑफिस का, वहाँ क्या काम होता है, नगर निगम में काम कैसा होता है, वो भी थोड़ा सा एक्सपोजर विजिट होना चाहिए। इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से प्लान करें। सर, स्टूडेंट्स का मोटिवेशनल टेम्पररी होता है, क्षणिक होता है। हाँ, ये बहुत सही बात लिखी है अमित साहू जी ने। देखो, मोटिवेशन वैसा नहीं होता है कि हम कोई मूवी देख के और अगले दिन से लगे कि मैं तो दुनिया बदल दूंगा। वो मोटिवेशन सच में क्षणिक होता है, वो टेम्पररी होता है, क्योंकि वो अगले दिन हो सकता है नींद से आप उठेंगे तो वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है। मोटिवेशन होता है जो आप आसपास की चीज़ों से सीखते हैं, और सबसे तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं हो सकता। आपके मम्मी पापा ने जो स्ट्रगल किया है, मम्मी पापा के जीवन की कोई घटना होगी इस तरह की कि कैसे उन्होंने विषम परिस्थिति में जो है उसको अपने को चेंज किया और माहौल धीरे धीरे बदला उन्होंने मेहनत मेहनत के बल पे, और कैसे आपकी अपब्रिंगिंग उन्होंने की है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं होता है। आपके कोई टीचर होंगे जो बहुत अच्छा, मतलब उनका शेड्यूल होगा, बच्चों से बहुत अच्छे ढंग से वो रहते होंगे, बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देते होंगे स्कूल में, तो उनसे सीखिए कि उनसे उनके जीवन की जो रियल स्टोरीज है उससे मुझे लगता है मोटिवेशन ज़्यादा, और परमानेंट मोटिवेशन वही होता है। मोटिवेशन टेम्प्रेरी वही होता है जो आप किसी चीज़ को देख के, मूवी को देख के या किसी की बात, जैसे हो सकता है मेरा अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उससे बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हो जाए, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि अगले दिन फिर वो किसी चीज़ को देख के वो डीमोटिवेट हो जाते होंगे। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स से बड़ा मोटिवेटर, टीचर से बड़ा मोटिवेटर और कोई नहीं होता है। सादर नमस्ते सर, कुमारी कामिनी यादव 10th की स्टूडेंट है स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल में, किंतु प्रैक्टिकल नहीं दिला पाई हूँ। तो प्लीज़ इसमें अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग अगर जुड़े हैं तो वो प्लीज़ देख लें, भरत यादव जी ने कुछ इसमें सवाल किए हैं, ये एक बार देख लें। और क्या पेरेंट्स द्वारा बच्चों को अत्यधिक पैम्पर करना उचित है? इस वजह से बच्चे व पेरेंट्स दोनों ही शिक्षक के द्वारा लगाई गई हल्की डांट को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये बहुत ही, मतलब, जेन्युइन कह सकते हैं, और ये मैटर ऑफ कंसर्न है आज के पेरेंटिंग के लिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपने घर का, मैंने एक डॉटर को, एक दिन अपनी बेटी है मेरी, उसको मैंने डांटा तो वो 1 घंटे तक रोई, सिर्फ डांटने भर से। उसने कहा, आप डांटे क्यों, मुझे समझा भी सकते थे। तो आजकल के बच्चों को डांटना और समझाने में भी अंतर समझ में आ रहा है कि बच्चे इतने सेंसिटिव हो गए। ये जो आपने डॉक्टर बसंत तिवारी जी ने लिखा है कि ये जो आजकल की पेरेंटिंग है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा पैम्पर करना, तो बच्चे जो डांटना और उन सब चीज़ों को वो हैंडल नहीं कर पाते, उनको लगता है कि पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट में है, मेरे पापा ने ऐसा बोल दिया, मम्मा ने ऐसा बोल दिया, कोई अगर दादाजी हैं घर में या दादी माँ हैं उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसमें परेशान हो जाते हैं। तो बच्चों को बीच बीच में जो गलत कर रहा है उसको समझाना चाहिए, जो अच्छा कर रहा है उसको पैम्पर करो या उसको आप प्रेस करो, बट जो गलत कर रहा है उसको सिखाइए। क्योंकि आज स्कूलों में भी इस तरह का हो गया है कि टीचर जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटते नहीं हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा डांट के कारण भी बच्चे कुछ गलत स्टेप उठाते हैं। तो ये बचपन से ही बच्चों को थोड़ा सा जो गलती कर रहे हैं उनको सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। तो ये बहुत ही, मतलब, आजकल के समय में हम कह सकते हैं कि ये बड़ा, मतलब, मैटर ऑफ कंसर्न है। ये डॉक्टर बसंत तिवारी जी ने ये बात जो कही है बहुत ही सटीक बात कही है आजकल के पेरेंटिंग के बारे में। उज्जवल भविष्य के लिए हम किस प्रकार बच्चों को रख सकते हैं, ये तो जनरल टाइप की बातें होगी जो मैंने अभी तक बताया है। मुझे लगता है कि आधे घंटे निकल गए, बट आप लोगों से बात करते करते कैसे आधे घंटे निकले, मुझे अभी इलेक्शंस की तैयारी में जाना भी है। तो आप लोगों से इंटरेक्शन के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये जिला प्रशासन बिलासपुर के द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये लगातार जारी रहेगा। और अंत में जो बच्चे 10th और 12th का एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड विशेस। आप बेस्ट करिए, बेस्ट होगा, जो आपने किया है, अपना बेस्ट एफर्ट दिया है उसके लिए, मतलब, आप तैयार रहिए, अच्छे के लिए भी तैयार रहिए, बुरे के लिए भी तैयार। और पेरेंट्स और टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि अभी से बच्चों से पढ़ाई की बात, या बहुत ज़्यादा होमवर्क भी अगर टीचर्स ने दिया है इस समय समर वेकेशन में तो ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा होमवर्क मत दीजिए बच्चों को, थोड़ा बच्चे एंजॉय भी करें, क्योंकि सजेशंस आ रहे हैं कि समर कैंप होना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे आजकल इतने बिजी रहते हैं कि उतना तो हम लोग बिजी नहीं होते। सुबह स्कूल से आए, फिर ट्यूशन, ट्यूशन के बाद फिर शाम में उनको थोड़ा, उनको स्विमिंग के लिए भेज दे रहे हैं, बैडमिंटन खेलने भेज रहे हैं, किसी स्पोर्ट्स में लगा रहे हैं, फिर वहां से लौटने के बाद होमवर्क करना है, होमवर्क करने के बाद उनको फिर कुछ और नए ढंग से उनसे बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, समझाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, अपने रियल लाइफ की जो आपकी जो जर्नी है उसको डिस्कस करेंगे, तो मुझे लग रहा है बच्चे बहुत ज़्यादा उससे मोटिवेट होंगे। ठीक है, मेरे से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।